पार्टी में आई मिसेस रायचंद की फ्रेंड्स धीरे धीरे ही बातें कर रही थीं, लेकिन इनाया और मिसेस रायचंद सब सुन चुकी थीं, बस जाहिर नहीं होने दिया। दोनों होठों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए हॉल के सेंटर में पहुंची। मिसेस रायचंद शायद कुछ कहने वाली थीं कि अचानक किसी की हिल्स की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इनाया की नज़र भी एंट्रेंस की तरफ गई और आंखों के आगे जो चेहरा आया उसे देखकर गुस्से से उसकी भौहें तन गईं। मिसेस मल्होत्रा के साथ सिया ने वहां कदम रखा और सबकी निगाहें उन पर ठहर गईं। कईयों के एक्सप्रेशन बिगड़े, एक बार फिर वहां फुसफुसाहट शुरू हो गई। सिया मल्होत्रा यहां? मुझे तो लगा था कि कायरव की शादी के बाद मल्होत्रा खानदान के इनसे रिश्ते बिगड़ गए हैं। सिया यहां क्या कर रही है? संयुक्ता ने इन्हें यहां क्यों बुलाया है? अब आएगा असली मजा। ये जगह सिया डिजर्व करती थी। अब वो इस मिडिल क्लास लड़की को उसकी औकात दिखाएगी। अब तो कायरव की शादी हो गई है, सिया को अब उसे भूल जाना चाहिए। मुझे तो सिया शुरू से पसंद नहीं थी, उससे बेटर तो मैं हूँ। जब मुझे कायरव नहीं मिला तो उसे कैसे मिलता? यार तुम्हें नहीं पता कितना एटीट्यूड दिखाती थी कायरव पर, ऐसे अपना हक जताती थी जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। मुझे तो जब पता चला कि कायरव ने किसी और से शादी कर ली तो इतनी खुशी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे भी इस बात का दुख नहीं कि कायरव मुझे नहीं मिला, लेकिन इस बात की खुशी ज़रूर है कि कायरव ने सिया को रिजेक्ट कर दिया, वो भी इस मिडिल क्लास लड़की के लिए। मिसेस मल्होत्रा और सिया का यहाँ आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। संयुक्ता ने बुलाया होगा तभी तो दोनों आई हैं। आई थिंक दोनों फैमिलीज के बीच जो भी प्रॉब्लम थी शॉर्ट आउट हो गई है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इन दोनों के यहाँ आने के पीछे मुझे तो कोई बहुत बड़ी वजह लगती है। ये सिया की जगह थी, जब ये लड़की बीच में नहीं आती तो आज हम सब सिया से मिलने आए होते। आई थिंक सिया इसलिए यहाँ आई है। जितने लोग उतनी बातें हो रही थी, कुछ सिया को यहाँ देखकर हैरान थे तो कुछ खुश और कुछ अब पहले से ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। जो लड़कियाँ इनाया को देखकर चिढ़ रही थीं वो खुश थीं, कुछ सिया के फेवर में भी थीं। इन सब बातों के बीच इनाया की घूरती नज़रें सिया पर टिकी थीं। सिया ने चैंपियन गोल्ड ऑर्गेन्जा ड्रेप साड़ी पहन रखी थी, हल्की, ट्रांसलूसेंट और मॉडर्न, साथ में बोल्ड स्वीटहार्ट नेक बैकलेस ब्लाउज, बाल सॉफ्ट कर्ल्स में खुले, न्यूड ग्लॉसी लिप्स और ब्रॉन्ज आइज, डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स, हाथ में मेटालिक क्लच और न्यूड हिल्स। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। उसकी एंट्री ने पूरे हॉल का टेम्परेचर बढ़ा दिया। उसकी ब्यूटी में एक डेंजरस कॉन्फिडेंस था जो किसी को भी इनसिक्योर कर दे। सिया की चैंपियन ऑर्गेन्जा साड़ी उसके कर्व्स पर ऐसे गिर रही थी जैसे स्पेशली उसी के लिए बनी हो। उसका बोल्ड ब्लाउज और ट्रांसलूसेंट ड्रेप, क्लासी भी, किलर भी। एक सेकंड को सब भूल गए कि ये किटी पार्टी है, रेड कार्पेट नहीं। सिया की स्मग स्माइल और एटीट्यूड बस दिलों में जलन और दिमाग में खलबली मचा रहा था। शायद इसीलिए वहां मौजूद ज्यादातर लड़कियां उससे चिढ़ती थीं और आज भी उसे देखकर उनके एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे थे। सिया मिसेस मल्होत्रा के साथ मिसेस रायचंद की तरफ बढ़ रही थी और शातिर निगाहों से इनाया को ही घूर रही थी। दोनों ने आज साड़ी ही पहन रखी थी, लेकिन साड़ी से लेकर उसे पहनने के तरीके और उनके फाइनल लुक में जमीन और आसमान का अंतर था। मिसेस रायचंद ने मुस्कुराते हुए दोनों का वेलकम किया। मिसेस मल्होत्रा कुछ उखड़ी हुई लग रही थी, शायद खुश नहीं थी, मजबूरी में यहाँ आई थी। उन्होंने बस हेलो हाई किया, लेकिन सिया मिसेस रायचंद के गले लगी जैसे उनसे उसका कितना करीबी रिश्ता रहा हो, फिर इनाया के पास आई। हेलो इनाया, कैसी हो तुम? हेलो, मैं ठीक हूँ। इनाया को मजबूरी में होठों पर मुस्कान सजानी पड़ी जबकि सिया को यहाँ देखकर उस पूल पार्टी याद आ गई थी और दिल गुस्से से जल रहा था। दैट्स नाइस, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। एक्चुअली जब से मैंने तेज और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सुना है मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी। इतना बड़ा स्कैंडल, पब्लिक, मीडिया, सबका ध्यान तुम पर है। तुम्हें तो इन सब की आदत भी नहीं है। शायद ये मैटर इतना नहीं बिगड़ता अगर तुम्हारे नाम के साथ कायरव रायचंद का नाम नहीं लगा होता। तुम रायचंद खानदान की बहू हो इसीलिए मीडिया इस केस में इतना इंटरेस्ट ले रही है। सिया ने बड़ी ही चालाकी से इस मैटर को उठाया था और अब वहां मौजूद लोगों के बीच खुसुर-फुसुर शुरू हो गई थी। इनाया खुद पर उनकी अजीब नजरों का ठहरना फील कर रही थी, बातें भी उसी के बारे में हो रही थी और इनाया जानती थी कि सब सिया ने जानबूझकर किया है। सिया यही नहीं रुकी, उसकी वेलविशर बनने का नाटक करते हुए उसने आगे कहा, आई थिंक अभी तुम्हें पब्लिक अपीयरेंस और मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। तुम्हारी एक जरा सी मिस्टेक कायरव को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले ही तुम्हारी वजह से उसे पुलिस, मीडिया सबको संभालना पड़ रहा है। तुम्हारे अफेयर की न्यूज़ का असर कायरव की इमेज, कंपनी की रेपुटेशन सब पर पड़ा है। मैंने बात की थी उससे, काफ़ी परेशान था, लेकिन तुम बिल्कुल रिलैक्स लग रही हो। आई गेस तुम्हें कायरव पर विश्वास है कि वो सब हैंडल कर लेगा और इसमें डाउट नहीं कि वो कर लेगा, बट कब तक करेगा? आई थिंक तुम्हें कायरव के हर्ट्स की वैल्यू करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और उसके लिए सिचुएशन और डिफिकल्ट नहीं बनानी चाहिए। फ्यूचर में तुम ऐसे स्कैंडल से दूर रहो तो अच्छा होगा, वरना कहीं वो तुमसे शादी करने के डिसीजन पर रिग्रेट ना करने लगे। सिया बड़ी ही चालाकी से सारी बातें उठा रही थी। इनाया सब समझ रही थी कि वो क्या करना चाह रही है, उसकी बातों का मतलब क्या है, वो क्या जताना चाह रही है। गुस्से से उसने जबले भींच लिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे कायरव पर विश्वास है कि वो सब संभाल लेगा, और ये विश्वास इसलिए है क्योंकि मैं सही हूँ, और यही वजह है कि कायरव मेरा साथ दे रहा है। आई नो शुरू में सिचुएशन थोड़ी खराब थी, लेकिन अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई है तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, इसीलिए तुम्हें मेरी या कायरव की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों साथ हैं, और जब तक साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनाया ठहरी और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तुमने मेरे अफेयर की बात की ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था। शायद तुमने न्यूज़ ध्यान से सुनी नहीं, इसीलिए ये कह रही हो। तुम्हें पहले पूरे मैटर को समझ लेना चाहिए था। पुलिस की रिपोर्ट पढ़ लेती तो डिटेल में सब पता चल जाता कि क्या हुआ और क्यों, फिर तुम ये गलती नहीं करती। शायद तुम्हें पता नहीं कि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। चलो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। तेज धनराज मेरा बॉस था। अपने करियर की शुरुआती टाइम में मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की थी, और उसने अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज़ किया। उसका असली चेहरा सामने लाने के लिए मैं उससे उस होटल रूम में मिलने गई थी। कायरव सब जानता था, इनफैक्ट मैंने जो किया उसके कहने पर ही किया। मीडिया को तेज ने इन्वॉल्व किया था ताकि मुझे बदनाम कर सके, लेकिन उसका फायदा भी हमें ही हुआ। आज तेज जेल में है, देर से ही सही, लेकिन मुझे इंसाफ मिल रहा है। इनाया ने सिया की बोलती बंद कर दी। सिर्फ उसकी ही नहीं, जितने लोग अभी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे, इनाया ने उन सब के शब्द छीन लिए थे। वहां अब सन्नाटा पसर गया, हर कोई अब उन दोनों को देख रहा था। इनाया यही नहीं रुकी, हाथ बांध कर उसके सामने खड़ी हो गई। क्या कह रही थी तुम, कि मुझे अभी मीडिया से दूर रहना चाहिए, पब्लिक अपीयरेंस को अवॉइड करना चाहिए? क्यों, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों छुपूं? जब मेरे हस्बैंड ने मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई तो तुम आधी अधूरी बात सुनकर ऐसा कैसे कह सकती हो? यू नो वॉट, इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद तुम्हारी सोच ऐसी है, आई एम शॉक्ड। खैर छोड़ो, मैं किसी की सोच तो नहीं बदल सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि मेरे हस्बैंड और मैं ऐसी सोच नहीं सकते। हम जानते हैं कि हम सच्चे हैं और सच को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
मुझे ना मीडिया का डर है और ना लोगों का। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, क्योंकि मैं सही हूँ। मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं, और ना ही मेरे हस्बैंड को है। तुम्हें भी हमारी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे के लिए हम दोनों हैं। जो हुआ या हो जाएगा हम संभाल लेंगे। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, वो क्या है ना, तुम्हारी शक्ल तो मुझे पहले ही पसंद नहीं थी। आज तुम्हारी बातें सुनने के बाद तुम्हारी प्रेजेंस से भी मुझे चिढ़ हो रही है। इनाया ने साफ शब्दों में सिया को दूर रहने कह दिया था। उसे साइट करते हुए वो आगे बढ़ गई। सिया अपनी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकी, पहले इनाया के जवाब और अब ये। वो गुस्से से तिलमिला उठी। टू बी कंटिन्यूड।